शांति हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी प्रातः सुशील भाई जी उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। जिस वर्ष ज्ञान सरोवर अकेडमी का उद्घाटन हुआ, उसी वर्ष मनुष्य से देवता बनने का ये ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। देवभूमि में रहते वो देवता के संस्कार तो थे और उसको बहुत तेजी से इमर्ज करना आरंभ कर दिया। और न सिर्फ इतना, दो तीन वर्ष के बाद ही अर्थात 1999 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप इस मधुबन धरनी में 1999 से रहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आप मीडिया, सोशल विंग और पब्लिक रिलेशन की सेवाएं संभालते हैं। लौकिक में आपने 14 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का अनुभव प्राप्त किया सोनी कंपनी में अमृतसर में। तो लौकिक अलौकिक दोनों रीति से प्रतिभा संपन्न भ्राता हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे मधुबन में जो सुबह में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की आपस में भेंट होती है, उसके आप एक्टिव सदस्य हैं। इतना ही नहीं, जो मधुबन से प्रश्न उत्तर मुरली के निकाल कर और हर मास का पुरुषार्थ का चार्ट भेजा जाता है, आप ही भेजते हैं सबको। तो अभी हम आपसे सुनते हैं वरदानी अमृत वेला का महत्व क्या है। आदरणीय प्राता जी,
ओम शांति। वरदानी अमृत वेला, हमारे ब्राह्मण जीवन का ये जैसे ज्ञान फाउंडेशन है, ऐसे सारे दिन में जितने भी प्रकार की हम आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक गतिविधियों के क्षेत्र में आते हैं, तो जो सवेरे की संचित की हुई शक्ति वो हमारी सारे दिन में काम में आती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो सारा दिन निश्चिंत रहते हैं, और जब चार्जिंग नहीं करते तो फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ चार्जिंग करना है, और चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो जाए तो कनेक्शन क्लास। इसी तरह से आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए विशेष रूप से बाबा ने अमृत वेला नियुक्त किया हुआ है, इस समय का चयन किया हुआ है। वैसे तो कहा जाता है पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, लेकिन फिर भी सारे दिन में हम इतने बिजी हो जाते हैं कर्म क्षेत्र पर, इतना कर्म कॉन्शियस में आ जाते हैं कि जो स्मृतियां वो सारी धुंधली पड़ जाती हैं। इसलिए फिर बाबा ने नुमा शाम और अमृत वेले का योग जो है हम सब के लिए विशेष रूप से, हम सबको चार्ज करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष अपने बच्चों के लिए रखा है। क्योंकि अमृत वेले का समय सब फ्री है, उसमें हम कोई बहाना नहीं दे सकते। हाँ, किसी किसी की नाइट ड्यूटी हो सकती है तो उस अनुसार भी हम अपनी दिनचर्या एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अमृत वेला ही है। तो आप सभी जितने भी बैठे हैं सभी अमृत वेला करते हैं? जो नहीं करते हैं वो हाथ नहीं उठाओ। हमने क्या बोला? तो हाथ कौन उठा रहे वीर? तो हमारी सुनने की एकाग्रता शक्ति कितनी है हमको जांच लेना चाहिए। तो अमृत वेला तो सभी करते होंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन जो है ना खुशियों वाला जीवन है। सारे कल्प में जो खुश हम अभी रह सकते हैं वो देवताओं को भी नहीं होगी, लेकिन इस जीवन में कभी कभी खुशी में कुछ कुछ और भी आ जाता है, लेकिन उसमें भी हमको खुशी ढूंढनी है। क्योंकि बाबा ने हम सबको बहुत सारे प्रकार की युक्तियां बताई हैं। जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि हम बाबा के बन गए और सारे निर्विघ्न हो गए और कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कर्म भोग नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये तो हम जब ने ब्राह्मण जीवन में कदम रखा अर्थात अपना सिर ओखली में दे दिया, मुसल तो पड़ेंगे पड़ेंगे, लेकिन उन मुसलों का अनुभव भी हमें परमात्म प्यार की तरफ लेकर जाता है। इसलिए बाबा बंदेलियों का बहुत गायन करते हैं, बंदेलियां भी और बंदेले भी, भाई भी बहुत बंदेले होते हैं, है ना, कोई कोई होते हैं। तो वैसे तो अमृत वेले के बारे में सभी जानते ही हैं, ऐसा नहीं है जो हम ज्ञान चर्चा करते हैं जितनी भी हम क्लासेस सुनते हैं कि इसको ज्ञान मालूम नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन फिर बात आती है करने के ऊपर, और फिर किस तरीके से करना है फिर वो दूसरी बात आती है। हम साधारण रूप से करते हैं, एक कायदे मुजब करते हैं, या फिर चला रहे हैं वैसे ठीक है, जैसे नियम बना हुआ है तो नियम अनुसार कर रहे हैं। तो हमको स्वयं ही अपनी सूक्ष्म रूप से जांच रखनी है, क्योंकि समय बहुत नाजुक है। वो तो बाबा 1936 से कहते आ रहे हैं समय बहुत नाजुक है, लेकिन जैसे जैसे हम इस ब्राह्मण पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस तो होता ही है ना कि इसमें दिन प्रतिदिन कहाँ पहुंच जा रहा है, कहाँ पहुंच जा रहा है, और हम हमारे कदम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो अमृत वेले जब हम बाबा को याद करते हैं तो दो शब्द हैं, एक वरदानी और दूसरा अमृत वेला। तो सबसे पहली बात है वरदान किसे मिलते हैं और किससे मिलते हैं और कब मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। वरदान किससे मिलते हैं? बाप से। और कब मिलते हैं? अमृत वेला। और क्यों मिलते हैं और किसको मिलते हैं? हम बच्चों को मिलते हैं, लेकिन कौन से बच्चों को? स्किल दे प्यारे, और प्यारे तो सभी हैं भगवान को, और प्यारे तो हम सब हो ही जाएंगे एक दिन, सभी को भगवान को प्यारे तो हो ही जाएंगे। लेकिन वरदान कब मिलेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वास्तव में जो भी हमने लौकिक में ज्ञान सुना है वो सारा अलौकिक में ही उसको कन्वर्ट तो किया बाबा ने। लौकिक में जो भी हमने स्कूल में शिक्षा पढ़ी है, जो भी हमने टीचर से पढ़ाई पढ़ी है, यहां भी तो हमारा स्टूडेंट लाइफ ही तो है। फर्क केवल इतना है कि वहां की धारणाएं और यहां की धारणाओं में अंतर है। वहां की प्राप्तियां विनाशी हैं और यहां अविनाशी प्राप्तियां हैं। यहां की उच्च कोटि की धारणाएं हैं, यहां निस्वार्थ प्यार बरसता है, वहां स्वार्थ है, हद है, यहां बेहद है। तो बेहद के बाप से बेहद का प्यार अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन भी तो करना पड़ेगा ना। अब घर में चार बच्चे हैं बाप के, तो बाप तो लायक जो बच्चा होगा जो पूरी आगे प्रॉपर्टी को संभाल सके, जायदाद को संभाल सके, उसी को तो देगा ना, ऐसे थोड़ा नहीं किसी को दे देगा। तो बाबा की नजर तो हम सब बच्चों के ऊपर रहती रहती है, लेकिन महसूस उसकी शक्ति को वही कर सकते हैं जो उसकी आज्ञाओं पर पूरा उसका अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उस पर चलते हैं। ये सब बातें हमको पता तो है, लेकिन ये कहां विघ्न आता है, क्यों नहीं हम वो वरदान रिसीव कर पाते हैं? तो कहीं ना कहीं सारे दिन में हमारे से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। जैसे पहले ही पहला पाठ बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो, लेकिन स्वयं ही जांच करें कि सारे दिन में सच में मैं वो महसूस करता हूं, स्वयं मैं अपने आप को महसूस करता हूं। जब भी हम अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि देह तो दिखाई देगी, ऐसा तो नहीं है कि सीधा मस्तक में आत्मा चमक रही है, कहां चमक रही है, दिखाई थोड़ी दे रही है किसी की, नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को स्वयं को महसूस कर लूंगा मैं अंदर ही अंदर, तो जितने भी देह हैं, चाहे वो बहनें या भाई हैं, देह दिखाई ही देगा, लेकिन वो आंखों में वो चंचलता नहीं आएगी। कल के वरदान में था ना, निर्विकारी स्थिति कब होगी, जब बच्चे निराकारी आत्मा स्थिति में स्थित होंगे, तो निर्विकारी स्थिति अर्थात कर्मेंद्रियां स्वतः निर्विकारी हो जाएंगी। ये तो सारा गुप्त पुरुषार्थ है, इसलिए बाबा कहते तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अंदर की बात है, बाहर से नहीं है। बाहर से हम भले जितना लंबे समय से साधना कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको ये ज्ञान योग हमारी भट्टी चल रही है, लेकिन जो आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो तो हमारा मन ही बता रहा है ना, हमारा दिल ही गवाही देता है कि हमारी परिवर्तन की प्रक्रिया किस गति से चल रही है आगे, वो तो हम स्वयं ही जान सकते हैं। इसलिए सारा पुरुषार्थ गुप्त है ये। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चों की नजरों में वो भगवान की नजरों में नहीं है, जो भगवान की नजरों में बच्चों की नजरों में नहीं है। इसलिए कई सारे यहाँ मधुबन निवासी ऐसे हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन बहुत गुप्त पुरुषार्थी हैं। उनके पास में जाने से ऐसे वाइब्रेशन आते जैसे शरीर अवस्था का अनुभव होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते इधर। इसलिए मधुबन का गायन ऐसे नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होता है हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाता है। यहाँ आप आए हैं तो आपकी जो विशेषताएं हैं, हो सकता है हाँ, हम स्वयं भी अपनी विशेषताओं को उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबकी विशेषताओं को पहचान कर हमको विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी के लायक समझा है, तो उसकी उसके चयन में कोई फाट तो नहीं हो सकता है, उसके चयन में कोई तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। हम सब आत्माओं की है हद की बुद्धि, लेकिन बाबा की बेहद की बुद्धि है, और बाबा हमको हमेशा उसी स्टेज पर स्थित रहना देखना चाहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं। तो इसलिए सारा स्वयं के परिवर्तन की प्रक्रिया पर हमको बड़ा सूक्ष्म रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वयं से प्यार करना सीखना है, हम स्वयं से प्यार कम करते हैं, जो भी हमारे में कमियां हैं पता होता है हमको कमियों, लेकिन हम अपनी कमियों का ही चिंतन करते रहते हैं, अपने से जैसे अपने आप से दूरी बनाते जा रहे हैं। माना मेरे में कमी है, लेकिन चयन किसने किया है, तो उसने हमारी कमी को नहीं देखा है, उसने हमारी विशेषताओं को देखा है, तो उसने हमारे से प्यार किया है, और हम स्वयं से प्यार नहीं कर पा रहे। स्वयं के अंदर जो हीन भावनाएं भरी हैं, जो सूक्ष्म कई प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों से हमने स्वयं को बांध के रखा हुआ है, और उनसे ऊपर हम निकल ही नहीं पाते। भले हम बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो बाधक हमारे जीवन में बनते हैं, हमें स्वयं के संस्कार ही हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं, परेशान करते हैं। दूसरों को इतनी समस्याएं नहीं आती, दूसरों की समस्याएं से पार होना बहुत आसान काम है, लेकिन जो स्वयं के संस्कार है, स्वयं का स्वभाव है, इसलिए अंतिम जो कड़ा पेपर है, मुश्किल है जो है, वो है स्वयं के संस्कारों का पेपर, और वर्तमान समय देखने में वही आता है। सामने से अगर किसी ने कुछ बोल दिया है, अगर हमारे में सहन शक्ति नहीं है, तो वो संस्कार निकल आते हैं, बाहर उभर आते हैं। इसलिए स्वयं के संस्कारों पर काम करना है, और वो बिना साधना किए नहीं होंगे, उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम ऐसा नहीं है कि हमको सारा काम धंधा छोड़ के टाइम देना है, क्योंकि जीवन सहज मार्ग का है, मुश्किल मार्ग का नहीं है। सहज जो है ना, सहज स्वतः अपने आप चलता है, वो जो मुश्किल का पुरुषार्थ करेंगे वो हमेशा नहीं चलेगा, वो दो दिन चलेगा, चार दिन चलेगा, पांचवें दिन फिर वैसे की वैसे। इसलिए बाबा की जो दिनचर्या ना बहुत संतुलित बनी है, बहुत फलदायक है, बहुत परिणामदायक है, बहुत सुख है उसमें, एक उसमें बैलेंस है। इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी दिनचर्या बनी हुई है, उस दिनचर्या का हम पालन करते रहें। भले हम किसी भी कर्म क्षेत्र में कोई भी ड्यूटी निभा रहे हैं, भले हम घर में हैं, परिवार में हैं, सेंटर में हैं, प्रवृत्ति में हैं, कहीं यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम कहाँ कितना जा रहा है, हमारे जो संकल्प हैं कहाँ जा रहे हैं। यात्रा में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, दिखाई देंगी, लेकिन बाबा कहते हैं उस लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की कला आनी चाहिए। तो हमारे जो ये परिवर्तन करने की कला, ये धीरे धीरे हमारे संस्कारों में बस जाएगी, और फिर देखते हुए भी जो सामने दिखाई देगा उस देखते हुए देह को देखते भी हम फरिश्ता रूप में देख सकेंगे। इसलिए ये संडे की मुरली में बच्चे अपने स्टेटस को भूल जाते हैं, कौन सा फरिश्ता सुदेवता स्टेटस, फिर हलचल में आते हैं, माया हिलाती है, क्योंकि प्राप्तियों से भरपूर नहीं होते हैं जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। क्योंकि आत्मा अपने आप में वैसे संपन्न ही है, संपन्नता तो ऑलरेडी है ही है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे अंदर में पुराने संस्कारों का, अज्ञानता के संस्कार का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको थोड़ा हटाना है। मूर्ति तो ऑलरेडी है ही है, मूर्ति तो इसके अंदर पत्थर के अंदर है ही है, वो बाहर से थोड़ी नहीं लानी है, लेकिन उसके पत्थर को हटाया जाता है जो अधिक लगा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो वास्तव में इसलिए बाबा कहते तुम अपने संपूर्णता के आसन पर हमेशा स्थित रहो, लेकिन हमारी आदत है आसन को छोड़कर मिट्टी से खेलने की आदत, देह रूपी मिट्टी की, मिट्टी के खिलौने से खेलते रहते हैं, क्योंकि जन्म जन्म की आदत पड़ी है, वो हमको खींचती है, और ये ऐसे जाने वाली नहीं है। सूक्ष्म रूप से हमें स्वयं के ऊपर गहरी नजर रखनी पड़ेगी तो ही निकलेंगे। इसलिए लंबे समय तक अगर हमको अमृत वेले का महसूस करना है कि सचमुच हमारा भगवान से कनेक्शन जुटा है, तो सारे दिन में एक प्रैक्टिस है जो हमेशा हमको करती रहनी है, और वो है देह से डिटैच होने की, अशरीरी बनने की, और वो लंबे समय तक निकलनी, छोटे छोटे गोल करना है। एक सेकंड देह से डिटैच हुए, निकले, बाबा को टच किया, बापा सुंदर, एक सेकंड लगा, इसमें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं। अगर सोचेंगे हम 5 मिनट रहेंगे ना, वो भी भारी लगेंगे। इसलिए कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड चल रहा होता है ट्रैफिक कंट्रोल का, वो भी भारी लगता है, क्योंकि हमने पहले से अपने मन बुद्धि को सेट नहीं किया। इसलिए एक एक सेकंड जमा करना है, एक एक सेकंड, जब भी मौका मिला 1 सेकंड से 2 सेकंड पर आओ, 5 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, 10 मिनट पर। तो जो छोटी छोटी आदत है ना, वो स्वतः खींचेगी हमको, क्योंकि हमने वो आदत डाल दी है। इसलिए कहते हैं ना, धागों का रस्सा बना उसका टूटना मुश्किल, आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। तो हमको ये आदत का निर्माण करना, नई आदत का। तो सारे दिन में हमको, हमें स्वयं जांच करनी है कितना समय हम देह से डिटैच रहते हैं, और जितना हम देह से डिटैच होने का प्रयास करेंगे उतना हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, क्योंकि विदेही बाप का अनुभव करने के लिए हमको भी उसी स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली की जो स्टार्टिंग है शायद 79 की, आवाज से परे की दुनिया में रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आकर आवाज के द्वारा तुम बच्चों से को आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए आए हैं, मुरली की स्टार्टिंग कितनी अच्छी बात है। तो हमको सारे दिन में देखना, आवाज में तो आना ही है, लेकिन ये जो आवाज है हमारी वरदानी आवाज हो जाए, हमारी दृष्टि वरदानी हो जाए। हमको ऐसा नहीं कि सवेरे आके बाबा हाथ रख देगा ऊपर, या मान लीजिए साकार में बाबा आते थे और बाबा से हम मिल रहे हैं, दृष्टि भी ले ली, बाबा ने हमारे हाथ पर रख दिया, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, संतुष्ट होते हैं उनसे भी, वो तो जो कह के गया वो करना पड़ेगा, और उसका हर माँ बाप के वरदान है। आज की मूल्य में ना, तुम बच्चों में क्या चाहिए, हिम्मत और स्प्रिट, ये क्या है, भगवान के वरदान है ये। मुरली का हर वाक्य, हर शब्द भगवान का वरदान है हमारे लिए। तो थोड़ा सा भी हम पकड़ के उसका हमको चिंतन करना, बढ़ाना है, तो वरदान मिलेंगे सतगुरु से। तो हम सतगुरु की आज्ञाओं का पालन, इसलिए कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा सिर माथे, हम उसको कितना अपना माथे के अंदर रखते हैं, कितना हम उसका पालन कर रहे हैं, ये हम स्वयं की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो स्वयं से प्यार करना सीखना है, अपनी कमी कमजोरियां ठीक है, लेकिन हमको उनका चिंतन नहीं करना है, क्योंकि हमारी उंगली स्वयं भगवान ने पकड़ी है, किसी मनुष्य ने पकड़ी है, किसी धर्मात्मा ने नहीं पकड़ी है, किसी देदारी ने पकड़ी है, किसी सन्यासिनी ने पकड़ी है, स्वयं भगवान का अवतरण हुआ है, उसने हमको चुना है। कौन सी परिस्थितियों से, किस परिस्थितियों से, संसार में नहीं तो ऐसा नहीं कि सभी को कोई बिघन थे, कोई दुखी था, कोई तो अच्छे खासे खा पी रहे थे, घरों में मजे में थे, भगवान ने क्यों पकड़ा, क्योंकि उसको अपना कर्तव्य करवाना है। तो उसने हमें अपने, हमारे अंदर विशेषताएं देखी कि यही बच्चे मेरे इस विषय को परिवर्तन करने के कार्य के लिए अपनी ताकत रखते हैं, तो जरूर तो हमारे में वो है ना, जो माना बाबा को हमारे ऊपर विश्वास है वो हमें अपना विश्वास कायम रखना है। स्वयं पर विश्वास तो ठीक है, मैं आत्मा हूं ये तो निश्चय है, लेकिन ये क्या है ज्ञान के ऊपर निश्चय, जो बाबा ने हमारे में देखा उसके ऊपर निश्चय रखना है कि सचमुच हम वो हैं, नहीं तो सम्मान हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अब कई बार क्लासों में कहते हैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हो या मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, महसूस कहां होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम कर्म में लाते नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान कब काम करेगा, जब हम थोड़ी सी भी हमारी हमारे जो कदम है गलत कार्य की तरफ जा रहे हैं, हम तुरंत हम उसको रोक लेते हैं, अर्थात हमने अपनी शक्तियों को काम में लगाया। संडे के मूल्य था कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, तो समय पर उनको सदुपयोग करना उनका। कहीं हम जा रहे मेडिटेशन में बैठे हैं या कोई जो कह रहा है हमको चलो वॉकिंग और हम निकल पड़े, तो अर्थात हमने शक्तियों का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। बाबा तो सूक्ष्म रूप से 24 आवर हमें शक्तियों से भरपूर कर रहा है, वो तो अभी भी हमारे साथ में अंग संग है। और इसका एक सुंदर सा अनुभव बताता हूँ कि बाबा सचमुच अंग संग है। ये तकरीबन 11-12 साल पहले की बात है, एक युगल आए थे दिल्ली से, तो हमें अमृतसर से एक बहन जी का फोन आया था कि दिल्ली से एक युगल आ रहा है, तो उनके जो माता जी थे और बेटी और साथ में दामाद, तो माता जी और बेटी दोनों ज्ञान में थे, माता जी अच्छे ज्ञान में और बेटी थोड़ा कम और दामाद ज्ञान में नहीं था, थोड़ा एंटी था वो। तो मुझे फोन करके उन्होंने कहा कि ये हम इनको मधुबन भेज रहे हैं, थोड़ा आप इनको ट्रीटमेंट कर देना जैसे भी होगा। मैं बोला ठीक है, तो वो ठीक इधर आए और महंगी वाली गाड़ी में, जो एक BMW गाड़ी होती है शायद महंगी होती होगी, तो उस गाड़ी में आए वो, तो 12 बजे इधर पहुंच गए। तो हमने उनको कहा भाई एकोमोडेशन के लिए भी बोला, तो माँ और बेटी उतर गए और दामाद नहीं उतरा, बोला मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं तो होटल में रहूंगा, मुझे ब्रह्मा कुमारी के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, तो वो गाड़ी से उतरे ही नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप भले होटल में रहो, कम से कम इनको कमरा तो देखाओ कैसा कमरा मिला है, तो जाओ तो सही कम से कम। तो खैर वो कमरे में गए, तो फिर वहां थोड़ा मन चेंज हो गया उनका। तो फिर दोपहर का टाइम था, तो माँ बेटी तो भोजन करने आ गए, लेकिन वो नहीं भोजन करने आया, तो वो सो गया उधर ही, क्योंकि वो भारी मन से लेके आया था। अब सास ने कहा तो जवाई ने थोड़ी मान ली उसकी, तो रिश्तों में तो ऐसे ही होता है। तो फिर वो उनको भोजन करने नहीं आया। फिर शाम के टाइम में वो पीस पार्क चले गए गाड़ी लेकर, तो वहां देखा सभी ने। फिर जब वापस लौटे पीस पार्क से, गेट से बाहर निकले, तो उनकी जो गाड़ी का शीशा साइड वाला जो होता है मिरर, वो टूटा हुआ था, तो कोई बस वस टक्कर मार के चली गई, और वो भी महंगा 20-25 हजार का नुकसान हो गया। तो और ही उसको ये हो गया कि यहाँ आया और उल्टा काम हो गया, तो इसका तो और ही उसको ये इंटरेस्ट और कम हो गया उसका। फिर शाम को वापस आ गए कमरे में, गए ऊपर, तो वो माँ बेटी तो भोजन करने आए रात को, लेकिन वो नहीं आया। अब शाम का 9:30 टाइम हो गया, उसमें भोजन भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है, तो हम तो जो था जैसे था अंदर से वैसे कड़ी और खिचड़ी लेके गए उधर, उनको थाली ले गए, तो बड़े भारी मन से थोड़ा थोड़ा खा लिया उन्होंने। फिर बाबा की तस्वीर देखी, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर, बोला ये क्यों लगाया हुआ है, ये तो भाई शरीर छोड़ दिया है तो इनको क्यों याद करते हैं, ये तो भूत हो गया एक हिसाब से, अपनी अपनी मेंटालिटी होती है उनकी, तो उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर उनको बताया हमने जितना हमको आता था, परिचय दिया बाबा का, संस्था का परिचय दिया। तो खैर जी भारी मन से वो सो गया, होटल तो नहीं गया फिर वो, तो सो गया। फिर अगले दिन सवेरे नाश्ता करने आया था, तो उनको वापस जाना था, तो उन्होंने कहा था हम कल वापस चले जाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर सवेरे वापस आया, नाश्ता किया उन्होंने, तो नाश्ता करते करते उन्होंने फिर बात की कि ये जो 5 घोड़े वाला रथ है ये क्या चीज है। तो हमने सोचा कि इन्होंने ओम शांति भवन में शायद वो एक रथ वहां बना हुआ है कर्मेंद्रियों का, वो देखा होगा। तो हमने उनको बताया हमारी कर्मेंद्रियां हैं और आत्मा इसी मालिक है, जो भी हमने उनको समझाना था समझा दिया। तो बोला नहीं रात को मुझे ना एक सपना आया था, बोला एक रथ आया ऊपर से, बहुत बड़ा रथ था, बहुत बड़े बड़े घोड़े थे और उसमें 2 लोग बैठे थे, एक माता जी बैठे थे खुले खुले बालों वाली और एक ये बाबा बैठा हुआ था, और वो मुझे ना ऊपर ले गए, वो रथ में बिठा के ऊपर ले गए। ये सत्य घटना है, ये जो हम लोग अनुभव नहीं करते, जो बाहर वाला व्यक्ति अनुभव कर रहा है। तो मुझे ऊपर ले गए वो, और ऊपर जाके देखा तो वहां चारों तरफ ना व्हाइट ही व्हाइट प्रकाश है और बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और बहुत सारे भाई बहने वहां व्हाइट कपड़ों में बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, बस इतना ही दिखाई दिया और फिर वो रथ मुझे छोड़ के चला गया नीचे। तो फिर सवेरे उसकी आंख खुल गई तो उसने ऐसे बताया, तो ये अनुभव बताया। फिर अनुभव के बाद तो हमने कहा आपको तो अच्छी बात है अनुभव कराया आपको। फिर वहां से बोला ठीक है, अब हम अभी तो आज हमको वापस ले जाना। हमने बोला ठीक है आपकी इच्छा। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ी टोली ले दी उनको। तो जैसे टेलीफोन एक्सचेंज थोड़ा बाहर निकले तो हमने कहा भी अभी चार था, हम देख लो अभी जाहिर है आप तो ये चार स्थान ही देख लो आप। तो फिर वो शांति स्तंभ देखा, उन्होंने शांति स्तंभ की तरफ गए, शांति स्तंभ देखा, फिर बाबा का कमरा देखा, फिर कुटिया देखी, फिर बाहर निकले। फिर गेट के बाहर जैसे निकला तो मुझे कहता है एक दिन और रुक सकते हैं? तो हमने कहा हाँ रुक सकते हैं, भले रुक सकते हैं। फिर रुकने के बाद फिर सारा घूम को फिर रात को वापस आया। फिर रात को उसने जो अनुभव सुनाया, बोला जैसे मैं नाश्ता करके वापस आया था शांति स्तंभ पर, तो टावर ऑफ पीस के सामने खड़ा था और जैसे मैंने लेफ्ट साइड देखा वो जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो बाबा वहां खड़ा था हाथ पीछे करके, हाँ, और हमको तो दिखता नहीं, वो देख के चला गया। देख तो बाबा वहां उसको दिखा, फिर आया बाबा कमरा कुटिया देखी, फिर बोला जब मैंने गेट से बाहर निकला था तो गेट के बाहर ठीक सामने बाबा, और उस समय मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि बाबा ने कहा मैं बच्चे यहां नहीं, यहां ही हूं, जब तक यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं हो तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा हमारे अंग संग है ही है। तो ये अनुभव बाहर वाले करते तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम दूसरी बातों में बिजी बहुत रहते हैं, दूसरी बातों में बिजी रहते हैं। तो ये गीत तो है, तुम तो यहीं कहीं मेरे अंग संग बाबा, वो है बाबा। क्या चीज है ये जो चार पेज की मुरलियां ना, यही बाबा है। वर्तमान तो वही है, अब स्थूल रूप से उस तरह से मिलना तो है नहीं जो पहले वाली थी कि दादी गुलजार जी बैठेंगे, बाप दादा बीच में आएंगे और हम उनसे मिलेंगे, दृष्टि लेंगे, पूरा हो गया। बाबा ने कहा वो कार्य तुम बच्चों को करना है। तो हमने देखा वो समय ना बहुत फास्ट परिवर्तन हो गया, बहुत फास्ट परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो हम देखे थे पहले, सबने अनुभव किया होगा पुरानों ने, कैसे आंगन में दादियां बैठी रहती थी। तो वो अभी काम कौन करेगा, हमेशा थोड़ा वही काम करेंगे, उनको तो दूसरे बड़े बड़े और भी तो काम करने हैं ना। तो उसके लिए हम सबको बाबा इतना शक्तिशाली बना रहे हैं और उसके लिए वरदानी अमृत वेला। तो अमृत वेला हमको ना नए नए तरीके से करना है, रोज रोज वही नहीं है, और उसको थोड़ा स्थूल रूप देना है। और स्थूल रूप क्या देना है, महसूस करना है कि बाबा मुझे ना मेरे पूरे शरीर को टच कर रहा है। हम ये नहीं सोचे कि मुझे यहां से छोड़ के ऊपर जाना है, नहीं तो मैं आत्मा हूं शांति धाम जा रही हूं, नहीं, शांति धाम को नीचे ले आओ पकड़ के। बाबा ने कहा पूछ, अगर कोई तुम बच्चों से पूछे बाबा कहां है तो क्या कहोगे, मेरे दिल में है। तो वो स्वयं जब कह के गया तो मान क्यों नहीं रहे हैं उसको, तो हम उसको यहां अनुभव करें ना। दो मिनट उसको हम आंखें बंद कर लें तो आंखों में पकड़ के रखो बाबा को जैसे। अब ये जो संकल्प होगा, ये जो इमेजिनेशन होगी कि मैंने आंखों में बाबा को पकड़ के रखा, तो इम्पॉसिबल है, बुद्धि इधर उधर जा ही नहीं सकती। कैसे जाएगी वो, जा ही नहीं सकती। मैंने हाथों में बाबा को पकड़ के रखा हुआ है, कैसे जाएगी वो, क्योंकि स्थूल हमको ज्यादा याद रहता है। मोबाइल पकड़ा तो हमको पूरी कॉन्शियस रहती है कि उस साथ वाला कोई हमारे से छीन ना ले, रहती कॉन्शियस की नहीं, हमारी जेब में है तो कितनी कॉन्शियस रहती है। लेकिन बाबा को पकड़ के रखवा जाए, हर चीज के साथ जोड़ना हमको। तो हमको नए नए तरीके से देखना है कि सवेरे महसूस करना है। नींद हमको क्यों आती है, क्योंकि हम पुराने डर्रे पर चलते रहते हैं। ये ज्ञान जो है तो हमको बाबा ने हमें अपने तरीके से उसको यूज करना, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो अपने अपने तरीके से हमको अमृत वेला फुल चार्ज रखना है। भले हम थोड़ा टाइम कर रहे हैं, जैसे चार से पौने पांच है, पौना घंटा कम नहीं है, बहुत ज्यादा पौना घंटा होता है, हमको टाइम कॉन्शियस नहीं बनना। हाँ, अगर लंबा समय हम अमृत वेला बैठते हैं तो उसके लिए ज्ञान भी बहुत बुद्धि में चाहिए, नहीं तो शरीर नींद मांगेगा, और शरीर को नींद तो चाहिए, और ज्ञान की प्रखरता है तो नींद भी समाप्त हो जाती है। फिर उतना ज्ञान चाहिए, उतनी बुद्धि वास चाहिए एकदम। तो बाबा को हमको इस तरीके से यूज करना है। बाबा हमको वरदान दे रहे तो महसूस करने के, सचमुच उसने हाथ रखा हुआ है। जैसे घरों में अकेले करते हैं, अब यहां मेडिटेशन हाल में तो सवेरे से हम ऐसा नहीं कर सकते अपना हाथ ऊपर रखें, हंसेंगे सभी, लेकिन घर में अब जब करते तो अपना हाथ ऊपर रख लो, क्योंकि तन किसको दिया है, भगवान को अर्पित है। ये आंखें किसको दी हैं, उसको अर्पित है, तो आंखों में वो बसा हुआ है। तो अब हमने उसको अपनी दृष्टि दे दी तो हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, भगवान सबके प्रति अच्छा सोच रहा है, भगवान सबकी विशेषताएं देख रहा है, भगवान सबको योग्यताओं को सेवा में लगा रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? उसको हमने अपने रग रग में बसा लिया, क्योंकि भगवान अभी खुद बाबा कह के जा रहा है कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। वो भक्ति काल का सर्वव्यापी नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो हमको अनुभव करने हैं, तो जिसको भक्ति मार्ग में कहा तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, अभी तो हमको प्रैक्टिकल अनुभव करना ना, तो अमृतवेल हमको महसूस करना है कि बाबा ने हमको पूरी तरह पकड़ के रखा हुआ है और मैंने बाबा को पकड़ के रखा हुआ है, जैसे कंबाइंड रूप का अर्थ क्या है। और ये जो स्थिति होगी, ये स्थिति में हम अपने शरीर को भूल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने सुप्रीम सत्ता के उसके संबंध में आए हैं। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, हमारी जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को एकदम नष्ट कर देगी वो, और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को हमको महसूस करा के हमको परमधाम का फिर अनुभव हो सकता है। यही परमधाम का अनुभव कर सकते हैं हम इस मेडिटेशन हॉल में। ये नहीं हम सोचना हम मेडिटेशन हॉल में योग करने जा रहे हैं, यही परमधाम है, यही सोचना, यही मणियों का आगार है, यही बाप दादा की जो अवतरण भूमि है। मधुबन का कितना गायन है, कण कण में परमात्म प्यार यहां बसा हुआ है, तो हमारे भी हृदय में परमात्म प्यार बसा हुआ है, हमारे नैनों में भगवान बसा हुआ है। इतने सारे गीत बने हैं, गीत कितने अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, अर्थ सहित गीत है, लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है गीत चल रहा है, क्या चल रहा है वो पता नहीं, तो ट्यून तो कुछ चल रही है। तो हमको नए नए तरीके से करना है, महसूस करना है जैसे भगवान ऊपर से वरदानों की बरसात कर रहा है। बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, कितने वरदान दे रहा है, जितने मेरे सिर के ऊपर बाल है इतने वरदान दे रहा है भगवान, और जिसके सिर पर बाल नहीं है तो क्या होगा तो बिग बिग आती है ना वो लगा लेने के ऊपर तो हमको नए नए तरीके से करने हैं, ताकि उसमें रोचकता होगी, रुचि हो, मजा आए उसमें, कुछ हम शक्तिशाली चार्जिंग होकर बाहर निकले, एक संतोष है कि हाँ कुछ तो आज नवीनता की है। अर्थात अमृत वेले के बाद हमको सोने का ख्याल नहीं आना चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, लगे बाकिंग करें कुछ मनन चिंतन करने, क्योंकि अमृत वेले के बाद जो मनन चिंतन करते हैं वो हमारे पक्के संस्कार बन जाते हैं, वो हमारे जो ज्ञान का चिंतन है वो हमारी रगों में समा जाता है, हमारी नसों में समा जाता है। तो परमात्म प्यार हमारी रग रग में समा जाना चाहिए, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कितना सुंदर समय मिला हुआ है, हम सभी यहाँ भट्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं, कितने बताया था ना काल की मुरली में संडे की, कोटों में कोई, कोई में कोई, वो हम सब आत्माएं हैं। यहाँ मधुबन में आने के लिए कितना तरसते हैं, और हम भगवान की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन इतना अटेंशन भी उसी, क्योंकि माया भी यहाँ बड़े नए नए रूप से आती है। जैसे दुश्मन पहले कहाँ अटैक करने की कोशिश करता है, हेडक्वार्टर पर, तो माया जिस तरीके से जितना जितना हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, माया भी नए नए रूप से आती है, लेकिन उसको पहचानने की हमारी जो दृष्टि है या समझ है, वृत्ति है, उसकी भी प्रखरता तभी आती जाएगी जब हमारा मन बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, ज्ञान बुद्धि में होगा, तो तुरंत कैच में आएगा ये माया है, क्योंकि नए नए रूप से व्हाइट कपड़े में आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक कपड़े तो बहुत आ गई, उसको तो पहचानना आसान है, व्हाइट कपड़े में आएगी, कैसे आएगी, बैज लगा के आएगी, कैसे आएगी, ओम शांति करते हुए आएगी, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा ने कहते लौकिक सत्य निकले, लेकिन अलौकिक रिश्ते कायम हो जाएंगे, ये तो मेरी बहन जैसी लगती है, ये तो मेरी माता जैसी लगती है, या कोई माता बोलती है तो मेरे पुत्र जैसा लगता है, तो सूक्ष्म रूप से माया आती है। तो लौकिक अलौकिक दोनों से परे निकलना भी पारलौकिक दुनिया में हमारी वापसी हो रही है, तो हमको उसका चिंतन करना, लंबे समय से हमको बैठे बैठे सोचते रहना कि हमें घर से कितना प्यार है, अपने आप से प्यार, वो घर से भी प्यार चाहिए। जैसे जिस घर का जो लौकिक में घर का निर्माण करते हैं, उस घर की देखरेख के लिए हमारे कितना चिंतन चलता है, थोड़ा सा भी कहीं स्क्रैच आता है कैसे उसको पेंट लगाते हैं, कितना बुद्धि चलती रहती है, घर को सजाने संवारने के लिए कितना हम योजनाएं तैयार करते हैं। तो हमारा जो असली घर है परमधाम, एक अनुभव हम ये भी कर सकते हैं अमृत वेले, एक घर हमको परमधाम बना लेना है, भले जितने मर्जी कमरे बना लो, वहां कि अभी हम परमधाम के कमरे में प्रवेश कर रहा हूं, वहां की दीवारें कैसी हैं, लाइट की दीवारें हैं, कौन सी लाइट है, जो भी लाइट हो अपने हाथ में ही है, लाल रंग की कर लो, लाल रंग की लाइट है। पहला कमरा कौन सा कमरा है, वो पहला कमरा सर्वशक्तिवान का, मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान आपस में हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, सूक्ष्म शरीर से ही बैठ सकते हैं परम धाम में, क्योंकि संगम में कल्पनाएं हमारे हाथ में है, कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं, है ना, जैसे हम आमने सामने कोई हमारा दोस्त आता है, पुराना आता है, बड़े सालों बाद मिलता है, हम कितना उसके साथ चाय की चुस्कियां ले लेके कितनी बातें करेंगे, बचपन की बातें करेंगे। तो हम भी बाबा के सामने सामने बैठ के, बाबा आप कैसे हो, मैं ऐसा हूँ, आप भी वैसे हो, अभी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो रूरन करनी है वो। बाबा से रूरन, अपने आप से रूरन, अपने से बातें करनी है परम धाम में बैठ के। दूसरा कमरा कौन सा, विश्व कल्याणकारी का, उस सामान का, वहां से निकले और वहां घुस गए। फिर बाबा ने पकड़ के वापस लाया अभी भाई से कि पहले इस कमरे का काम तो पूरा कर, यहां से सर्वशक्तियों से चार्ज हो पहले बोला, तभी तो विश्व कल्याण करेगा, तुम तो चार्ज हुआ ही नहीं और बिना चार्ज हुए उठ के निकल जा रहा है। फिर बाबा ने बांह से पकड़ के लाया इधर वापस। तो हमको परम धाम में, क्योंकि संकल्प जो मारा मन है ना, वो तो संकल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि आदत पड़ी है, और बिना संकल्प के योग नहीं होता है, कहीं ना कहीं मन तो जाएगा। तो मन के संकल्पों की दिशा को हमको चेंज करना है। तो परम धाम में भी अपना एक एक मकान बना के रखना, बंगला बना के रखना है, अब जितना मर्जी बड़ा बना लो और जब मर्जी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, भले अवैध निर्माण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहां वो पीला पंज जो मशीन जैसे भी तोड़ने नहीं आएगी। तो वहां एक अपना मकान बनाना है और रोज बार बार देखना है वो मकान मेरा कैसा है, वो कितना सुंदर है, उस कमरे में कौन कौन सा क्या हमने कौन कौन सी तस्वीरें लटकी हैं देखनी है। पहली तस्वीर मेरे देवता इस रूप की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर फरिश्ता रूप की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर पूज्य रूप की तस्वीर है, चौथी उसमें पूज्य और भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। तो ड्रिल ना वहीं कर लेने की है, परम धाम में सारी ड्रिल कर लेने की, भक्तों को भी उठा के परम धाम में रख दो, क्योंकि वो तो बेचारे जा नहीं पाएंगे। बाबा ने क्या कहा है, अंत में ऐसी कमजोर आत्माएं आएंगी जिनको आपको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा। अब घर में बच्चे हैं, ट्रेन जा रही है, अब बेचारों से चला नहीं जा रहा है, बीमार है, तो क्या करेंगे माँ बाप, उठा के लेके जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम पूरी सृष्टि के कौन है, पूर्वज है, तो उनका कल्याण कौन करेगा, तो उठा के लेके जाना पड़ेगा ना। तो सब भक्तों की आत्माओं को जैसे पकड़ के उठाया और सीधा ऊपर ले गए, इमर्ज करना उनको, क्योंकि कितना चिल्ला रहे हैं। और उन सभी बातों से हम भी तो निकले हुए ना, भक्ति मार्ग में कितने हम भक्ति करते थे, आंखों से कितने असुर निकालते थे, कितने धक्के खाते थे, कितने पाठ पूजा करते थे, कितने और जगराते करते थे, कीर्तन करते थे रिझाने के लिए भगवान को, उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हुए। अब वो प्रॉपर मिल गया है तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो ज्ञान नहीं सुन रहा है उसको कम से पकड़ के इमर्ज तो कर सकते ना ऊपर, क्योंकि सबका पार्ट तो वहां है नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए निमित्त किसको बनाया भगवान ने। तो अगर हम उस कर्तव्य में हम अपने आप को बिजी रहेंगे तो एक नवीनता आएगी। तो महसूस करना है सारे वरदान हमको, जितने वरदान ये, अपनी एक लिस्ट बना लेनी है, 108 21 51 31 जो शगन वाला लगाते हैं ना, उसी तरह की लिस्ट बना लेंगे कि आज 11 वरदानों की अनुभूति परम धाम में करूंगा। वो लिस्ट बनानी है, खुद लिस्ट बनानी है और रोज की मुरली से वरदान निकाल देने हैं। मुरली को अलग अलग तरीके से हम उसकी विश्लेषण कर सकते हैं, कभी मुरली को वरदानों के रूप में, कभी मुरली को याद प्यार के रूप में, और परम धाम में बैठ के सोचना है कि बाबा ने आज मुझे क्या क्या पढ़ाया। तुम बच्चों में हिम्मत और स्पिरिट होनी चाहिए, बाप तुम्हें पीस प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आया हुआ है, सुख शांति तुम्हारा डबल वर्षा अधिकार है। ये कहाँ था, यह सुख शांति डबल वर्षा वरदान में था आज। हाँ, तो ऐसे ऊपर जाके रूट वन करनी है, वहां मुरली को याद करना है, क्योंकि इस दुनिया में बैठकर याद करेंगे तो इस दुनिया के ख्याल आएंगे, इस दुनिया से निकल जाना अपने को, ताकि यहाँ का ख्याल ही नहीं आए, क्योंकि हमको घर वापसी जाना है, आवाज से परे की दुनिया में जाना है। तो ये सारा चिंतन आवाज से परे की दुनिया में करना है, और जितना हो सके सबसे पहले चिंतन करने की आदत डाल दी, क्योंकि बिना चिंतन किए बिना लिखे हम अपने देह से, देह के संबंधों से या संसार के पदार्थों से, संसार के आकर्षणों से ऊपर निकल नहीं सकते, और ये लंबे समय के बाद होगा। ऐसे नहीं सारी बातें एक बारी हो जाएंगी, लंबे समय की आदत है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। जैसे अच्छे अच्छे जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो वो ठंडे ठाकुर बन के बैठ नहीं जाते हैं, खून पसीना बहा देते हैं एकदम, भागते रहते हैं भागते रहते हैं। तो हमें बाबा ने क्या, तुम हो जिन, जिन की तरह सीढ़ी लगा के रखो, अपने मन को काम दे दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी बाबा को ऊपर से पकड़ के ले आओ, पकड़ के लाए और यहां चिपका दिया, बस आंखों में बसा लिया, सिर में बिठा लिया। जैसे दादी जानकी जी कहते थे किस वेरे में परिक्रमा करती तो मामा बाबा को कंधों पर बैठा के विश्व की परिक्रमा करती हूँ। सुना होगा कहीं उन्होंने दादी जी के लग करते क्लास। और हम दादियों के जीवन को देखते हैं कितना तपस्वी जीवन सचमुच उनका, कितनी त्याग तपस्या उनके जीवन में भरा हुआ था। उनके पास में आने से हम बॉडी से डिटैच होते हैं। एक अनुभव और दादी चंद्रमणि जी का सुनाता हूँ। जब हम नए नए ज्ञान में आए थे अमृतसर में, तो हमको बड़े भाई लेकर आए थे। तो कोर्स तो हम तो थोड़ा साप्ताहिक पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ के समझ में आ गया था, लेकिन पहले दिन में वो लेके आए तो जैसे हमारा दादी ने हाथ पकड़ा, हम बॉडी से डिटैच हो गए एकदम, जैसे शरीर है ही नहीं। और दूसरी जैसे दादी ने हाथ लगाया तो पूरी जैसे आत्म अनुभूति हो रही है। और दादी जैसे कह रही थी, तुम तो बिल्कुल एकदम प्योर आत्मा है। आगे कुछ नहीं बोला दादी ने, मुख से नहीं बोला कुछ भी, ये जैसे संपूर्ण महसूस था। तो कैसा त्याग का बल, वो तपस्या का बल, वो साधना का बल कितना उनके अंदर में होगा। तो ये हमारा जो चलता फरता जीवन ही तपस्वी जीवन है। ये नहीं हम बैठे बैठे तपस्या कर रहे, नहीं, हर कर्म में तपस्या समा जाए, क्योंकि हमको आगे चलकर इतना टाइम मिलने वाला नहीं है कि हम 4 घंटे बैठे तो तपस्या हो जाए, 2 घंटे बैठे तपस्या हो जाए, बहुत सारे काम आएंगे। हमको हर कर्म को तपस्या में ही परिवर्तन कर देना है, हर बोल को तपस्या। बोल हमारे मुख से वो ही निकले जो आवश्यक हो, जो किसी के दिल को राहत पहुंचाने वाले, जो वरदानी बोल हो, तो ये बोल ही हमारी तपस्या के किसी को प्रेरित कर दे भगवान से जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कोई बोल हमारा ऐसा वैसा निकलेगा और सामने वाला घायल चले गए हम उधर से। तो हम किसी के बारे में बुरा सोचने के बजाय हम अपने पांव पर ही कुल्हाड़ा मार रहे हैं। कल के मुरली में था ना, अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं मारना अर्थात पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। तो ये पढ़ाई क्या है, तो वरदान ही है ना, भगवान के वरदान तो 24 आवर हमारे पर बरस ही रहे हैं। दूसरी बात, जो हम अमृत वेला करते हैं उस अमृत वेले को सारे दिन में बार बार याद करना है। नहीं तो क्या होता है, जैसे हमने अमृत वेला किया, जैसे हम सीढ़ियां बाहर निकले, वो वाली चीजें यहीं रह जाती हैं और बार हम दूसरी बातें पकड़ लेते हैं। तो जब भी हम थोड़ा सा टाइम हमको निकले फ्री में बीच में, तो सोचना है अमृत वेले मैंने क्या किया था। बाबा के पास परमधाम में गया था, वहां कितने कमरों में से गुजरा था, बाबा के साथ हमारी क्या बातचीत हुई थी, कितनी शक्तियां भरी थी, कैसे मैं चार्जिंग हुआ था, कितनी उमंग उत्साह भरा था, चुस्ती फुर्ती आ गई थी, ताकत आ गई थी, शरीर से डिटैच हो गया था, विश्व परिक्रमा की थी, बाबा से कंबाइंड हुए थे, वो सारी बातें हमको करनी है। तो वो जो सारी अमृत वेले की महसूसता है, वो जो अनुभूति है, वो दिन में भी अनुभव होगी। और दिन में अगर 3-4 बार हम अनुभव कर लेंगे तो शाम को ही फिर बैस आयोग होगा, और शाम को तो अमृत वेले से भी वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, वो वहां का वहां छोड़ देते हैं। इसलिए जो योग वहां छोड़ा ना अमृत वेले का योग, उसको दिन में खींच के लेना, उससे वहां से फिर चालू कर देना। जहां हमने पॉज किया था, पॉज को हटाया, फिर नए प्ले चालू कर दिया, वहां से नया पार्ट दिन में कर्म करते हुए, कर्मों में अनासक्त भाव। तो बाबा को बुला लो कि बाबा अभी मैं आपके साथ में बैठ कर ये कर्म कर रहा हूं, कर्ण करावना हर हर आप हो, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो कर्म करवा रहा है, ये शरीर उसकी अमानत है, ये तन उसकी अमानत है, ये ऑफिस जो भी हमारे सुख सुविधाएं संसाधन सेवा के लिए मिले हुए, ये सब उसकी अमानत है। तो जब हम इन स्मृतियों के साथ सेवा के क्षेत्र में आते हैं, तो बाबा की जब याद समाते, तो उस याद में सफलता समा जाती है। नहीं तो उस सेवा करने के बाद फिर थोड़ा अहंकार जागृत हो जाता है कि ये सेवा हमने की है, और अहंकार बड़ा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, ब्रह्मा बाबा के 3 वरदान लास्ट के कौन से, निराकारी, पहला निराकारी, दूसरा निरंकारी, तीसरा निर्विकारी, नहीं, पहला निराकारी, दूसरा निर्विकारी, तीसरा निरंकारी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि निराकारी अवस्था से निर्विकारी बनेंगे और फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अहंकार बड़ा शत्रु है, ये अपने पुरुषार्थ का अहंकार रहता है। सामने वाला अगर कोई हमको दिखता है कि ये तो ऐसा वैसा बोल रहा है और हम तो अच्छा बोलते हैं, तो भी अहंकार आ जाता है, तो हमारी शुभ भावना कहाँ गई फिर? अपने परिवार का मेंबर है, भाती है, सदस्य है, और हम उसके प्रति सोच रहे हैं इससे तो हम अच्छे ऐसे सोच लेते हैं। अब घर में हो, हम सब एक ही परिवार के हैं, बहुत आपस में प्यार करते, तो सोचेंगे उनके प्रति कैसा सोच। तो हम तो बेहद के परिवार में हमने कदम रखा है, इतना बड़ा परिवार मिला, इसलिए बाबा कहते हैं परिवार में पास तो सब में पास। ये परिवार तो हमको बड़ा मुश्किल से मिला है, लेकिन हमने मांगा नहीं था बाबा से तो क्या मांगा था,
बाबा से तो बाबा ही मांग रहा था, लेकिन साथ में परिवार मिल गया। तो अपने से परिवार और परिवार से भी बहुत प्यार करना है, कोई कैसा भी है प्यार करना है। और प्यार तब होगा जब हम दूसरों की विशेषताओं को देखेंगे, और दूसरों की विशेषताएं तब दिखेंगे जब पहले अपनी विशेषताओं का चिंतन करते रहेंगे। वो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, उन विशेषताओं को बाबा की देन समझकर कर्तव्य में लगाते रहेंगे, दूसरों को सुख देने में लगाते रहेंगे, रास्ता देने में, सहयोग देने में, स्नेह देने में, तो स्वतः ही वो विशेषताएं क्या करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, हमारे स्वयं के विघ्न खत्म हो गए, ना केवल हमारे बल्कि दूसरों के भी विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो अमृत वेले बाबा को एकदम पक लेने का। नींद आती क्यों है? क्योंकि हमारा मन बुद्धि चलता नहीं है उस समय, और थोड़ा थोड़ा करना, लंबा समय नहीं खींचना। ऐसा नहीं हमको अमृत वेले 2 बजे उठ गए, ठीक है उठना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर, लेकिन उतना स्टेमिना होना चाहिए। ऐसा नहीं 2 से 4 तो कर लिया और 4 बजे की जाके लुढ़क गए खटिया पर जाके, नहीं, एक आदत बनानी है। पहले अमृत वेले को पक्का करना है और बाद में सोना नहीं है, नहीं तो सोने के बाद क्या होता है, सारी की कमाई चट। बाबा पता नहीं कौन सी दादी कह रही, अगर सोने यहां अमृत वेले के बाद खटिया पर जाते तो सामने देखो वहां कोबरा बैठा हुआ बड़े वाला। तो एक आधा सांप लेके राखी लो आप, सारी की कमाई नष्ट हो जाएगी। तो हमको उसके बाद चिंतन करना है। और अगर नींद आती है, क्योंकि नींद आने के बहुत कारण हो सकते हैं, अगर हम दवाई लेते हैं तो भी नींद आ सकती है, रात को ज्यादा भोजन किया तो नींद आ सकती है, हमारे संकल्प नहीं चल रहे तो नींद आ सकती है। अच्छा, जहां हम बैठे हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं, जो हमारे अंग संग में आत्माएं बैठी हैं, अगर हम कमजोर हैं और आसपास वाली आत्माएं भी थोड़ी सो रही हैं तो हम भी उसी चपेट में आ जाएंगे। तो वहां से उठ जाना चाहिए, उसको नहीं छेड़ने की जरूरत है। पता नहीं वो कोई स्वप्न देख ही रहा, ऊपर बाबा खींच लेके या बाबा उसको दिखा रहा हो और हम उसको छेड़ दिया, हम तो सोचे वो सोया हुआ है। तो हमको उसको नहीं छेड़ना है, हम खुद ही वहां से उठ के वॉकिंग करें, है ना, डाइनिंग हॉल में चले जाएं, वहां बैठ के मुरली पड़े, थोड़ा खुशी होनी चाहिए कुछ तो, थोड़ा 10 लाइनें हमारे हाथ में आ जाएं। भगवान की मुरलियां क्या है, अभी तो वरदानों से भरी हुई है ना, वो मुरली पढ़ो, उसका चिंतन करो, अच्छे अच्छे बाकी लिखो, इतना ढेर सारा लिटरेचर है, ढेर सारी व्यक्तवाणी है, साकार वाणी है, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है, कभी तो ऐसा लगता है क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, ये तो बिना गुठली के आम जैसे है। तो हमको अच्छे अच्छे महावाक्य लिखने हैं खुद, ठीक है बनी बनाई किताबें मिलती हैं, स्पार्क में ये सब मिलती हैं, लेकिन अपनी किताब का निर्माण करना है, हाथों से लिखना है बड़े बड़े, और घर में जगह जगह लिख देना है, जिस कमरे में मैं रह रहा हूं ये साधारण कमरा नहीं है, ये भगवान क्या दिया हुआ, दी हुई प्रॉपर्टी है, अमानत है, ये दीवारें नहीं है, ये भगवान के CCTV हैं, ये मुझे देख रही हैं दीवारें, प्रकृति के 5 तत्व मुझे देख रहे हैं, वो पावन बनने के लिए हमारे समक्ष में है। इतना सारा काम है, कई बार तो अमृत वेले का टाइम ही छोट पड़ जाता है, स्वयं को पावन बनाना, आत्मा को पावन बनाना, कर्मेंद्रियों को पावन बनाना, प्रकृति को पावन बनाना, भक्तों को सगा देना है, भटकती तड़पती आत्माओं को सगा देना, जिनको हमने दुख दिया उनसे माफी मांगना है, माफ करना है, माफी देना, धन्यवाद करना, कितने सारे ढेर का काम है, और फिर भी हम सारा टाइम निकाल के फिर भी थोड़ा सो जाते हैं। कितने होशियार हो गए टाइम निकालने के लिए कि अपनी नींद फिर भी निकाल ही लेते हैं। तो अपना एक टाइम टेबल नए तरीके से क्रिएट करना है, और जो अपना करेंगे ना उसका अपना मजा होगा, दूसरे के हम क्लासेस सुनेंगे उतना समय अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में अगर करेंगे ना तो क्लास वहीं के वहीं रह जाएंगे, इस फिर उसके बाद हमारा परिवर्तन नहीं होगा। फिर सुनेंगे क्लास तो बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छा क्लास करते हो, यहाँ के बाद आप भी सब बोलेंगे क्लास तो बहुत अच्छी कराई, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो हमको खुद करना पड़ेगा, खुद करेंगे तो मजा आएगा। तो ये वरदानी अमृत वेला अर्थात हमारा हर मोमेंट हर पल अमृत वेले जैसा ही रहे, चाहे दिन में या रात हो, लेकिन अमृत वेले जैसा रहे, अमृत अर्थात अमृत रस, हमेशा वो लार की तरह टपकते रहने चाहिए। जैसे इमली का नाम सुनते क्या होता है, आया किसी को मुख मिला, वो गुलाब जामुन का नाम सुन के, लेकिन इमली का नाम सुन के गुलार आती है। तो ऐसे हमारे मुख में वो सलाइवा टपकना चाहिए। बाबा कहते ना, तुम बच्चे विचार सागर मंथन करते रहो तो ज्ञान टपकता रहेगा, परसों के मूल्य में था मीठे बच्चे। तो कुछ ना कुछ ज्ञान का बिंदु हमारे मन बुद्धि के ऊपर टपकता रहना चाहिए, बरसात सोच लेना, जैसे शिवलिंग है ना वो, तो मैं भी शिवलिंग की तरह और ऊपर से एक बिंदु बिंदु टपक रहा है ना, जैसे वो शिव बाबा है तो मैं एक सोमवार नया सोमवार, मैं मास्टर शिवा हूं, नया सोमवार लेना है ना, मैं बेहद का यज्ञ हूं, ये भी हम सोच सकते हैं। कुछ सुमान ऐसे होते हैं जो बताने वाले नहीं होते हैं, वो अंदर ही अंदर करने होते हैं। तो नए नए सुमान लेंगे, नए तरीके से करेंगे, नए इमेजिनेशन करेंगे, तो मजा आएगा, चार्जिंग होगी। और फिर वो एक बार हमने स्वाद चख लिया तो सारे दिन में बार बार हमारा मन कहाँ जाता है, जो हमको अच्छी चीज लगती है वहीं जाता है। फिर बुराइयां छोड़ने की जरूरत नहीं, वो स्वतः छूट जाएंगी, वो स्वतः गौण हो जाएंगी। अच्छाइयां धारण करने की जरूरत नहीं, हमारी एक आदत पड़ जाएगी, उस पटरी पर जब हम अपने पांव रख देंगे तो स्वतः चलेंगे, करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा नेचुरल पुरुषार्थ हो जाएगा। और जो नेचुरल वो सदा काल चलेगा, और जो हम भारीपन से करेंगे वो मुश्किल वाला करेंगे, वो थोड़े दिन चलेगा। इसलिए जहां भी हम रहते हैं कर्म क्षेत्र पर, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को देखते हुए, जो भी हमारे हिसाब से उन सबको देखते हुए, सबके साथ एडजस्ट होते हुए, इग्नोर भी नहीं करना है। घर में कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, लेकिन सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट ज्ञान युक्त संतुष्टता, उनसे भी दुआएं लेनी है। और जो बाहर वालों की दुआएं ना बहुत काम करती हैं, वो अगर बाहर वालों को थोड़ा सा भी हमारे से बाबा ने सुख शांति की महसूसता करा दी तो हमें बहुत सारी दुआएं मिलेगी, और वो दुआएं हमको बहुत निर्विघ्न बना देंगी, ना केवल हमें बल्कि हमारे आसपास वालों को भी निर्विघ्न बनाती जाएंगी। तो ऐसे वरदानी अमृत वेला तो हो गया पूरा अभी, तो वरदानी अमृत वेला हमारा निरंतर चालू ही रहे। ओम शांति।
Oh.